फिर फरमाया जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया इनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है, जब वो इसमें फेंके जाएंगे तो इसके धाड़ने की हौलनाक आवाजें सुनेंगे। याद करिए कोई मंजर जो देखा हो कभी किसी ऐसी वार्ड से गुजरे हो जहां से जख्मियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही हो, बर्निंग वार्ड जो होता है जहां लोग जले हुए लोग भेजे जाते हैं, वहां की चीखें याद करें। किसी जंगल के पास से गुजरे हों, किसी शेर के धाड़ने की आवाज़ सुने, फिर इन आयतों को पढ़े और वो जोश खा रही होगी, शिद्दते गजब से फटी जा रही होगी। हर बार जब कोई गिरोह इसमें डाला जाएगा, इसके कारिंदे यानी वर्कर्स इन लोगों से पूछेंगे, इसको हाईलाइट कीजिए, अलम यातिकुम नजीर, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? किसी ने तुम्हें नहीं इस बुरे अंजाम से डराया? आप भी और आप मैं भी सोचें, हमारे पास भी कोई खबरदार करने वाला आता है? कोई आता है जो कहता है लोगों डर जाओ संभल जाओ? वो जवाब देंगे, हाँ खबरदार करने वाला हमारे पास आया था मगर हमने इसे झुठला दिया। तकजीब, डिनायल, कुछ समझा ही नहीं, अहमियत ही नहीं दी उसकी बात को। मसरूफ, बिजी, सोना, खाना, पीना, कमाना, इतने तुम्हारे पास काम थे, हम कैसे बुलाने वाले की पुकार पे लब्बई के? और कहा अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया, ये अपना रिग्रेट दूर करने के लिए लोग बोलते हैं, अरे छोड़ो कुछ नहीं है कुरान में, ये ऐसे मौलवियों की बातें, तुम बड़ी गुमराही में पड़े हुए। ये भी एक जुमला होता है जो दीन की तरफ बोले उनको कहते हैं ये गुमराह है, ये खुद भटके में, इनकी बातें सुन के छोड़ो छोड़ो घर में रहो, हम नहीं जाते खुतबा सुनने, हम नहीं मौलवियों की सुनते, हम सिर्फ फर्ज पढ़ने जाते हैं, पढ़ के आ जाएंगे, ये सोच। और वो कहेंगे काश हम सुनते या समझते, लो कुन्ना नस्मउ नाकिल। देखिए आप और मैं इस वक्त सुन रहे हैं और थोड़ा थोड़ा हम समझने और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्यामत के दिन अगर इस जुमले को देखें जो जहन्नमी जहन्नम के दरवाजे पे खड़े बोल रहे हैं, काश सुन लेते या समझ जाते तो आज इस भड़कती हुई आग के सजावारों में शामिल ना होते। मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, फिर हम जहन्नमी ना होते। कितनी हसरत होगी ना सुनने वालों को, कितना मलाल होगा ना समझने वालों को। इस पर इस तरह वो अपने कसूर का खुद एतराफ करेंगे, लानत है इन दोस्तियों पर, अब क्या फायदा। जेल में जाकर कोई जितनी मर्जी मिन्नतें कर ले, कभी जेलर उसको वहां से निकलने नहीं देगा। एक दफा सजा सुना दी गई फिर गया, आज मेरे पास वक्त है, आपके पास भी वक्त है, आज को अगर नहीं हमने गुजारा तो याद रखिए फिर क्या होगा। और आप देखिए एक जलने का अजाब, एक चीहो चिंघाड़ का अजाब, कितना बुरा मंजर है जहन्नुम का। दुनिया में किसी घर से इस किस्म की आवाजें आ रही हो तो इंसान कभी उस तरफ कान ना धरे। और यहां यह भी बात नोट कीजिए कि सुनना हिदायत की तरफ पहला कदम है। लोग कहते हैं सुनते हैं अमल तो बदल नहीं रहा, फिर भी सुनिए, समझते हैं समझ नहीं आता फिर भी समझिए, क्योंकि आप में बहुत सारे जरासीमों से बचे रहते हैं इस वक्त सुनने में। मैं अक्सर साथियों से कहती हूं आप बैठ नहीं सकते आ जाइए लेट के सुन लें, आप कुरान नहीं खोल सकते ऐसे ही बैठ जाइए, कुछ भी कर लीजिए, किसी तरह खींच खांच के आपको अपने आप को इस कमरे में ले आइए। इधर आने की एक तासीर ही बहुत बड़ी होती है कि इंसान की बीमारी दूर होने लगती है, लेकिन शैतान बहाने बहाने से हमें सुनने से पीछे रखेगा, इबादत में उलझाएगा, सुनने से रोक देगा। तुम सारी रात जागती रही हो, अब छोड़ो पारा सुनने, कहाँ जाना है घर सुन लो। तो घर में सुनने जो रात का जागा है वो तो इधर आके नहा धो के आराम आराम सिर्फ बैठा है, घर बैठा होता तो वो सो रहा होता नहीं। अब कल की रात जागना है ना तो फिर आज मैं जरा ज्यादा सो लूँ, वहां कहेंगे माँ कुन्ना, काश ना होते हम इनमें से। शैतान आपके मेरे सुनने और सुनाने का इंतहाई दुश्मन है, पढ़ने पढ़ाने पर बहुत जोर देगा, एक पारा और पढ़ लो, 20 नफल पढ़ लो, 100 नफिल पढ़ लो। मुझे बताइए आजकल एक रात है तकरीबन 1.5 घंटा 2 बनता है टोटल, मेरा ख्याल है अगर आप मगरिब से फजर के इन बिटवीन टाइम को यूज़ करें, 2 घंटों में अगर 100 नफिल पढ़े तो 1 घंटे के 50 नफिल, और 50 नफलों को अगर आप टाइम बाउंड करें तो 60 मिनट में 50 नफिल कोई पढ़ेगा तो 1 रकत कितने पे होगी, 40 सेकेंड की नफ। क्या पढ़ेंगे, सुभानक अल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, कुल वल्ला पढ़ेंगे, तत्तहियात में जाएंगे, रुकू में जाएंगे, लेकिन इस पे उम्मत खुश है। याद रखिए अल्लाह ने आज हमें इस बात को सामने रख के इस बात के सोचने का मौका दिया कि हम अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि सारी जिंदगी सुनेंगे, सुनेंगे तो बचेंगे, नहीं सुनेंगे तो अल्लाह ताला ना करे कि हमारा हाल बुरा हो। किसके लिए आसान होता है ये, जिसकी बात आगे है, इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैब, जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं यकीनन उनके लिए मगफरत है और बहुत बड़ा अजर है। ये है असल में चीज, रब को देखे बगैर देखो। तुम ख्वाह चुपके से कोई बात करो या ऊंची आवाज से, अल्लाह के लिए यकसां है। वो तो दिलों का हाल तक जानता है, क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया। क्या कोई माँ अपने बच्चे से ये कहेगी कि बेटा मैं तुझे नहीं जानती, मैंने तुझे पैदा किया, तुझे पेट में रखा। बाज़ दफ़ा आप देखिए जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो माँ उसे कुछ छुपाने लगते हैं, उकड़े उकड़े रहते हैं, कभी अपनी परेशानी नहीं बताते, कभी कोई दिल में मोहब्बत का फूल खिल चुका है नहीं बताते। माँ उसकी आंखों और उसके चलने फिरने से पहचान रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई बात है ज़रूर। तो एक दिन आके कहती है ना, बोल तुझे क्या मसला है। बेटियाँ माँ को गम नहीं बताती अपने कभी, अब अच्छी बेटियां तो कभी भी नहीं बताएंगी। माँ पूछती है बता तुझे क्या गम है, तो खुश नहीं लगती। वो क्या होगा जो ये जुमला है, अला यालमु मन खलक, लोगों वही ना जाने जिसने पैदा किया। कभी कर्ब में हो, कभी अजमाइश में हो, कभी तकलीफ में हो, इस आयत को याद कर ले। अब इसका वजीफा बना के पढ़ना शुरू हो जाए, इसको घोल के पीना शुरू हो जाए, इसका तावीज़ बनाए, नहीं आप इस ताल्लुक को तो महसूस करें, हाँ मेरे मालिक तू ही मेरी बात को जानता है। अब मैं युजीबुल मुस्तर इज़ादा, तो अल्लाह से अपना ताल्लुक तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। जिसका ये जुड़ गया फिर उसका अल्लाह के दीन से भी जुड़ा रहेगा, और अल्लाह हमारा अपना ताल्लुक कभी कमजोर ना करे। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को ताबे कर रखा है, चलो इसकी छाती पर। हम सब कहाँ चलते हैं, जमीन के सीने पे चलते हैं। अपना ही बच्चा कभी आपके ऊपर चढ़ जाए ना, आप लेटे हो तो चंद मिनट के बाद आप कहते पीछे हटो, मेरा सांस घुट रहा है, मुझे दबाओ नहीं, परेशान कर दिया। कितने करोड़ों हाँ करोड़ इंसान इस जमीन के ऊपर चल रहे हैं, कभी आज तक चीखी चिल्लाई हिली, धक्का मार के हमें पीछे फेंका, ये है बंदगी। रब बिछाए जमीन पे तो बिछ जाओ, और आसमान बना के इज्जत और इफ्फतों की बुलंदी पे कर दे तो खड़े हो जाओ। ना उसने फखर करना है ना इसने शिकवा करना है, ये है दावत इल्लाह का नुक्ता। जो मुझे मिल गया मैं उस पर ही खुश हूँ, मुझे सिर्फ जूते सीधे करने पे रख दो लेकिन मेरा नाम कहीं डाल दो, क्यों कि मैं इस रास्ते से अपने आप को दूर नहीं करना चाहती। ये शैतान का एक बहुत बड़ा दरख्ना होता है, बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मुझे तो आता ही कुछ नहीं, और ये तो फलां कर लेगा, और जब इतने लोग हैं तो मेरी जरूरत नहीं। अच्छा ये भी एक बड़ा जुमला होता है, मसलन अब तो इतने लोग हो गए हमारी तो जरूरत नहीं, वाकई दीन को तो मेरी आपकी जरूरत नहीं है, पर मुझे तो दीन की जरूरत है। मैं आके बैठूंगी तो मेरे साथ तो ये मामला होगा कि मेरा तो अजर लिखा जा रहा है, आपको मेरे से कुछ नहीं लेना, कोई और आपको मेरे से अच्छा पढ़ाएगा, पर मुझे इजाजत दे दें कि मैं आके बैठ जाऊं। ये तड़प और ये आजदी आएगी, फिर आप देखिए कि अल्लाह आपको किस छोटे से पुर्जे की तरह कहीं ना कहीं फिट करेगा। सिर्फ उस एक के मिस होने पे गाड़ी रुक जाती है, बाज़ूकात छोटी सी गाड़ी का पुर्जा एक होता है। कई आप लोगों के भी तजुर्बे होंगे, गाड़ी ने चलते चलते चलने से इनकार कर दिया, फिर वो 10,000 20,000 का एक कितना सा पुर्जा ला के रखा तो चल पड़ी। अपने आप को हमेशा वो पुर्जा बनाए कि जिसके बगैर दीन की और दावत की गाड़ी नहीं चलेगी। यही मेरी आपकी ज़िंदगी का मकसद है, यही पैगाम अल्लाह के नबी आपको मुझे देकर गए। आप कहते कर तो रही हूँ बड़ा कुछ, घर में चार बच्चे आते हैं उनको नजरा पढ़ा लूँगी, एक बच्ची आएगी उसका तर्जमा सुन लूँगी, जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन कान नहुम बुनजान मरसूद, दीन और दावत का काम इज्तमाईयत का काम है। अगर मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ, मैंने रात अपने कुछ एडमिन्स को दिल की गहराइयों से दुआएं दी, बिलीव मी मैं नाम नहीं लेती किसी का, मेरा दिल नहीं करता, देखिए मेरा दिल नाम ले रहा होता है। मैंने कहा उनको इस वक्त पता भी नहीं है कि रात की घड़ियों में उनकी दी हुई चीजों को लेकर मैं क्या कर रही हूं और मैं किस काम के करने की कोशिश में हूं। अब अगर मैं अकेली होती, अगर मैं अपनी दावत जगह दावत का काम करती, अल्लाह की कसम खा के कह सकती हूं मैं यहां इस वक्त ना बैठी होती। अगर मैं वो चेन पूरी करूं ना कि वो जो वहां से यहां तक आने में और इस सारे में चली, आप हैरान हो जाएंगे। सैकड़ों लोग होते हैं जो किसी एक काम को पाया तक मील तक पहुंचाते हैं। तो अगर मैं मसलन यहां आती तो क्या मैं नेक ना होती, क्या मैं कोई नेकी का काम ना करती? नहीं, बहुत नेक होती, मैं अपने घर बैठती कंप्यूटर खोलती, बैठ के मैं कुछ हदीसें पढ़नी शुरू हो जाती, कुछ आयतें पढ़ लेती, मैं चार लोग अपने गली के जमा करती, नहीं होता। याद रखिए बड़े काम तन्हा नहीं होते, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। जिसने कोई बड़ा काम किया उसको तो जरूरत है, कल पढ़ के आए हजरत ईसा ने क्या कहा था, من انصاری اللہ، سورت صف کے اندر آپ نے پڑھا ہے، کون اللہ کے رستے میں میرا مددگار؟ نبیوں کو ضرورت پڑتی تھی مددگاروں کی، تو آپ اور میں تو ہیں ہی بیچارے کمزور، اور ہمارے اندر تو خوبی کوئی نہیں، اور میں تو صرف یہ بول سکتی ہوں تھوڑا بہت، مجھے تو وہ آتا ہی نہیں ہے جو ساتھی کرتے ہیں. یقین کرے میرا دل کرے رات تڑپ تڑپ کے، صبح کی بات نہیں ہے، یہ ساری وہ آسمان دیکھتے ہوئے میرا دل پورا، میرا پورا جسم دعا کا حصہ بنا ہوا تھا جو میں اپنے ایڈمنس کو دے رہی تھی، کسی کو ایک میسج، دوسرے کو تیسرا، تیسرے کا وہ جواب. یقین کریں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، صرف اور صرف اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ میں ادھر ہوں. اور آج آپ کہہ دیتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، تو میں کہوں گی میں نے پھر کچھ نہیں کرنا، میں تو پہلے بھی نہیں کرتی. یہ آپ لوگوں نے جو کام کرنا ہے لینا لے لیجیے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنی ذات کو پیچھے کر دیں، پھر دیکھیے کہ دین کیسے پھیلتا ہے اور پھر اللہ آپ کو کیسے آگے کرتا ہے. جو ہمیشہ اپنی ذات کے رونے ہی رو رو کے رہتے ہیں نا، ان کو پھر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی نہیں ملتا. تو اب دوبارہ سنیے، چلو اس کی چھاتی پر. زمین سے ہی اگر میں سیکھ لوں نا، عاجزی سیکھ لوں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ کبھی فلائرز اور یہ ساری مارکیٹنگ نہ ہوتی، کسی کو نہ پتا چلتا ہم کیا کر رہے ہیں، تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن مجبوری ہے، لوگوں کو بتانا تو پڑتا ہے نا. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اتنا قیمتی کام کرتے ہیں اس دعوت میں ہمارے ساتھ، ان کا نام کسی فلائر پہ نہیں آتا. بلیو می، ان کا نام نہیں ہے، کسی کو ان کا کام بھی نہیں پتا. چند نام ہے جو ہمارے آن لائن کلاسز کے ناطے سے یا ایڈمنز کے نام آپ اور میں دن رات سنتے بولتے ہوں گے، اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. لیکن بیسیوں ایسے ہیں جن کا آج تک نام بھی نہیں لیا کسی نے، کئیوں کا مجھے بھی نہیں پتا. اور کبھی مجھے کوئی کام اچھا لگے، میں پوچھوں کس کا ہے، تو وہ پھر بتاتے ہیں یہ وہاں کی سسٹرز ہیں. شروع کے ایڈمنز مجھے آج بھی انگلیوں پہ یاد ہے، جہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا انگلیوں پہ یاد ہے، ایک ایک چیز، نام، ان کی سب چیز. اب جو ہے مجھے اس میں سے 10 یا 20% پتہ ہے، زیادہ پتہ ہی نہیں ہے. تو کیا ان کا اجر نہیں ہے؟ ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے. اور اگر یہ کہا جائے میری تو مانی نہیں، میری تو سنی نہیں، مجھے تو اہمیت نہیں دی، مجھے تو پوچھا نہیں، پوچھا تو مانا نہیں، تو پھر یاد رکھیے یہ صرف شیطان کا جملہ ہے کہ تم نہ سنو، لا یسمو. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ دعوت اللہ کا کام زندگی کے آخری دن تک لے لے، آخری دن تک لے لے، اور ایسا لے کہ پھر جو اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہو اور بندوں کو بھی نفع ہو. دیکھیے یہ بھی ایک جملہ بتاؤں، کیونکہ آج پورے پارے میں دعوت کی بات ہے. کبھی کبھی آپ دین کا کام کرتے ہیں نا، تو دنیا میں بہت خیر ہو جاتی ہے، اور کبھی نہیں ہوتی. لیکن اللہ کے ہاں دونوں صورتوں میں اجر ہے. حضرت نوح کس چیز کی مثال ہے؟ دنیا میں اچھے نتائج نہیں نکلے، واقعی نہیں نکلے. لیکن سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور خود ہمارے پیارے نبی کے دور کا غلبہ دیکھ لیجئے کیا دکھاتا ہے. اللہ نے دنیا میں بھی کھیتیاں تیار کر دی. خوشی تو ہوتی ہے دنیا میں دیکھ کر اپنا کام، لیکن اللہ کبھی اجر ضائع نہیں کرتا. ہمیشہ یہ کہا کرے، اللہ ہمیں تو نے ہمارے دین کے اس کام کے بعد جو جنت میں تو دینا ہے، آخرت میں دکھانا ہے، دنیا میں بھی دکھا. ہماری کوششیں ایسی نہ ہو جائیں کہ جو ضائع ہونے والی ہیں. اللہ تعالیٰ، ہمارے ایمان اتنے کمزور، اتنے مضبوط نہیں ہے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی طرح کوئی رزلٹ نہ نکلے اور پھر بھی چلتے رہیں. واللہ ہی ایک نتیجہ ہمارا غلط نکل جائے، ہمارا سارا کانفیڈنس لوز. سیلف موٹیویشن آتی ہی ایمان کے ساتھ ہے. لوگ آئے، آپ کہتے ہیں بڑے لوگ آئے، بڑی انرجی ملی، بڑی مزہ آیا، تو بھائی اگر یہ نہ آتے تو کیا کرتے؟ میں کئی دن سے خود سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ اگر ہماری اس دعوت پہ آپ سب نہ آتے تو میں کیا سوچتی؟ میرا یہ آنا، یہ میرا کوشش کرنا اور ساتھیوں کی اتنی محنت کرنا، یہ کامیابی ہے کہ نہیں؟ مجھے تو کامیابی ہی لگتا، لیکن شیطان بہت سارے رخنے ڈالتا. اگلی دفعہ کوشش ہی نہ کرتے، نہیں جی نہیں، آئے کوئی نہیں، بلایا تھا آئے کوئی نہیں، کلاس شروع کی تھی ختم ہو گئی. بھئی آپ کیوں تولتے ہو؟ دیکھو اللہ نے تمہیں کام کیا دیا ہے. اور ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ اب زمین کی بات کے بعد فرمائے، وکلو میں رزق ہی، اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے؟ ذرا سے اس جملے کو دیکھیں. یقین کرے آپ، میں کہہ رہی ہوں کہ آج مجھے اللہ نے آسمان کیوں دکھایا، میں نے اس وقت نہیں سوچا، اللہ جانتا ہے ایسی میں بڑی باتیں کروں، میرے ذہن میں کوئی نہیں تھا کہ سورت ملک میں آسمان کا اتنا ذکر پڑوں گی. لیکن واقعی اللہ کبھی مشاہدہ کروا دیتا ہے. یہ اللہ کی ایک بانٹ ہوتی ہے، ایک اللہ کی دین ہے کہ کسی کی زبان سے کچھ لفظ نکالنے ہوتے ہیں نا، تو پہلے اس کے دل کو وہ کروا دیتا ہے. نبیوں کو تو اس نے معراج تک کرا دی. آج آپ دین کی طرف نکلے، ایسے ایسے اللہ آپ سے منظر دکھائے گا کہ بعد میں سمجھ آتا ہے یہ اس بات کی وجہ کیا تھی. یہ کوئی ہونا تو نہیں تھا، یہ اس لیے ہوا کہ آج یہ بات تو آپ کو اچھی طرح سمجھا سکوں. تو کیا ہم آسمان کے نیچے سے گزرتے ہوئے کبھی خوف محسوس کرتے ہیں؟ आप देखिए पुरानी बिल्डिंग्स है ना आपके इधर भी, पाकिस्तान में भी, लाहौर में, अंदरूने पाकिस्तान, जो अंदरूने लाहौर जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, तो लिखा नहीं होता कि बिल्डिंग्स को गिरा दें, गिरने का खतरा है। नॉर्वे में हर साल ऐसा होता है, जब बर्फ पिघलती है ना एंड पे, तो सर्दियों में बर्फ बहुत सारा, चार चार कितने फुट जम जाती है ना। अब जब टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है तो वो किसी एक दिन क्या होता है कि छतें भी यूं होती है ना, आपके जहन में तो आ ही रहा है, तो वो बर्फ से भरी हुई है, टेम्परेचर कम है तो जमा रहता है, लेकिन जब वो बर्फ के मेल्ट होने और पिघलने के दिन आते हैं ना, तो वो उस बिल्डिंग है जो बड़ी है उनके इर्द गिर्द तकरीबन इधर 6-6 फुट इधर पूरी बाड़ लगा देते हैं, इधर से नहीं गुजरना। क्यों? कि किसी वक्त वो पूरी छत का तोता नीचे गिरेगा, और हर साल एक आध मौत हो ही जाती है, सिर्फ वो थोड़ा सा पानी गिरने से बंदा नीचे आके मर जाता है। कभी आसमान के नीचे से सोचा, इतना पुराना आसमान है, गिर ना जाए, टूट ना जाए, फट ना जाए। इतनी सिक्योर दुनिया अल्लाह ने मेरे आपके लिए बना दी, और यहां आसमान से नहीं, जो आसमान में है। क्यों है आसमान में? मेरा रब, फरिश्ते और आसमानों में कितनी मखलूकात हैं कि जिनके बोझ से आसमान लदा पड़ रहा है। कभी आपने, मैंने सोचा कि ये हमारे ऊपर गिरेगा तो क्या बनेगा? और दूसरा खौफ, तुम्हें जमीन में धंसा दे, और यकायक ये जमीन छकोले खाने लगे। चल के आए, फील हुआ जरा गाड़ी के अंदर से निकल के यहां आने तक कि जमीन ही ना हिलने लग जाए, ऐसे में चनों की तरह उछाल के जमीन इधर से उधर फेंक दे। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में है तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे? कभी पत्थरों की बारिश हुई? जुर्म तो, गुनाह तो आम दिखते हैं लोगों के, लेकिन अल्लाह की जात जो है वो देखिए वो कैसे करता है। फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरे डरावे कैसे होते हैं, यानी अल्लाह कहता है मैं डराना चाहूं तो ये तुम्हें मंजर दिखाऊं, फिर शायद तुम्हारा दिल डर जाए। इनसे पहले गुजरे हुए लोग छुटला चुके हैं, फिर देख लो कि मेरी गिरफ्त कैसी थी। कितनी दफा पिछली कौमों का जिक्र पड़ा इस सूरत में। एक लम्हे के लिए भी ये सोच आई कि अल्लाह जब तू उनको पकड़ सकता है तो तू मुझे क्यों नहीं पकड़ सकता, और आज हमें क्यों नहीं पकड़ सकता? क्या ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को पर फैलाए और सुखेड़ते नहीं देखते? ऐसे पर उड़ते और खुलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, और ऐसे आज कभी अगर आपको अल्लाह कभी मौका दे और अपने घर ही ले जाए अल्लाह जहाज में बैठने का, आपको अगर सीट मिले जहां जहाज के विंग्स होते हैं, तो आप देखिए बिल्कुल यही सीन है, पर फैलाए और सुखेड़ते नहीं देखते। ये परिंदों से उन्होंने सीखा है कि जहाज उड़ते हैं, और क्या तो उसके अंदर से कई चीजें निकलती हैं, खुलती हैं, क्योंकि कसरत से ट्रेवलिंग होती है, और मुझे हम अमूमन कोशिश करते हैं चूज करना तो मिडल में लेते हैं सीट, ज्यादा इजी लगता है। तो उसमें आप देखिए कि परों की ये मूवमेंट देख के मुझे याद ज्यादा आ जाती है, किसने सीखा, किसने सिखाया? तो वो ये सारा करना कराना क्या है? फरमाए रहमान के सिवा कोई नहीं जो इन्हें थामे हुए हो, वही हर चीज का निगेबान है। बताओ आखिर वो कौन सा लश्कर तुम्हारे पास है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता है? कोई तैयार की हुई अपनी फौजें? कोई तुम्हारी आर्मी है? कोई तुमने अल्लाह के मुकाबले में अपनी नौसुबिल्ला दुश्मनी के लिए फौजें तैयार की हुई है? हकीकत यह है कि ये मुनकरीन धोखे में पड़े हुए हैं। क्या पता चला कि वो जात जो मेरे आपके लिए इतना कुछ करती है, इंसान उसके बारे में वो सोचता ही नहीं है। आप बताइए, बार बार सूरत में रहमान का लफ्ज भी आ रहा है, ये उसका रहम है कि आप और मैं जी रहे हैं? 2 दिन पहले पढ़ चुके हैं रहमान अल्लम अल कुरान, आज आपके सामने रहमान के इस कायनात में रहम की बातें दिख रही है। और आप देखिए कि ये जो अल्लाह सुबहाना ताला के लिए बात आई है ना कि वाहुअ लतीफुल खबीर, वो बहुत बारीक बीन है, बारीकियों से हर चीज को देखता है, वाहुअ लतीफुल खबीर। तो कभी इस पर भी गौर करें ना तो दिल बंद होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे हजरत अबू जर गफारी को बड़ी खूबसूरत नसीहतें की थी, पिछले सालों में मैंने पूरी हदीस कोट की थी। खुलासा क्या था कि अबू जर, कश्ती को मजबूत कर लो, कि समंदर बड़ा गहरा है जिसमें तुमने जाना है, और सारी बातें कह के एंड में कहा दिल को पाक कर लो, क्योंकि जिसने हिसाब लेना है वो लतीफुन खबीर है, बारीक बीन है। वो हमारी ऐसे ही नहीं देखेगा, कुछ लोग तो एक नजर में देख के कहते हैं हो गई सफाई, पर जो बारीक नजर का होता है कहता नहीं यहाँ धूल है, यहाँ डब्बा पड़ा है, अभी ये चीजें उठाओ, ये गंदा है। अल्लाह की नजर मेरी आपकी छोटी से छोटी अच्छी और छोटी से छोटी बुरी बात पे है। ये दुआ करें कि हम अपना तज़किया कर लें। या फिर बताओ कौन है जो तुम्हें रिस्क दे सकता है अगर रहमान अपना रिस्क रोक ले? दरअसल ये लोग सरकशी और हक से गुरेज पर अड़े हुए हैं। भला सोचो जो शख्स मुंह ऊंधा किए चल रहा हो, इस पे भी जरा सा इमेजिनेशन को स्ट्रांग करें, मुंह उठा के चल रहा है कोई, वो ज्यादा सही राह पाने वाला है? या वो जो सर उठाए सीधा एक हमवार सड़क पर चल रहा हो। अब देखिए सर जब मुंह ऊंधा किया जाता है ना तो ये बिल्कुल नीचे मुंह चला जाता है आपके नीचे। आप कभी बच्चों को देखें वो खेल रहे होते हैं कभी ऐसे, वो छुपन छुपाई और पकड़न पकड़ाई, पूरा सर नीचे कर दें आपको अगले एक फुट का भी नहीं पता होता आप किधर हैं। हो सकता है आगे पिलर आ जाए, जाके टक्कर हो जाए। एक बंदा है जो सीधा देख रहा है, मुराद ये है कि सीधे होके चलो, सर ऊंधे करने की बजाय सर उठाओ, सर उठा के जियो। कैसे? इनसे कहो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमको सुनने और देखने की ताकतें दी और सोचने समझने वाले दिल दिए। ये आयत नोट कर लें। हम कहते हैं सोचना समझना दिमाग का काम है, नहीं वो तो एक टूल है। पीछे से आए जाती है इंस्ट्रक्शन सोचने की दिल के रास्ते, लेकिन बात क्या है, कलीलुम्मा तश्कुरून, थोड़ा ही तुम शुक्र करते हो। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्दी व इलैही तुख्शरून। इनसे कहो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमको सुनने और देखने की ताकतें दी और सोचने समझने वाले दिल दिए, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। इनसे कहो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया है और इसी की तरफ तुम सिमटे जाओगे। ये कहते हैं अगर सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। कहो इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, मैं तो बस साफ साफ खबरदार कर देने वाला हूँ। फिर जब ये इस चीज को करीब से देख लेंगे तो इन सब लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार किया, और इस वक्त उनसे कहा जाएगा यही है वो चीज जिसके लिए तुम तकाजे कर रहे थे। इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अल्लाह ख्वाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पे रहम कर दे। काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचा सकता है? कुल हुवर रहमानु आमन्ना बिही। इनसे कहो वो बड़ा रहीम है, हम इसी पर ईमान लाए और इसी पर हमारा भरोसा है। अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सरी गुमराही में कौन पड़ा हुआ है। इनसे कहो और आप और मैं भी सोचें। मैंने सुना फ्रांस में पानी की कमी है, पानी महंगा है। इस आयत को पढ़िए। कुल अराई तुम्हें नस्बह मा उगुम गौरा फमैयाती कुम बिमाई मईन। कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर तुम्हारे कुओं का पानी उतर जाए यानी जमीन के अंदर चला जाए, कुएं खोद खोद के रह जाओ पानी नहीं निकल रहा, तो कौन है जो इस पानी की बहती हुई सूतें तुम्हें निकाल कर ला दे? लाता कोई? जाके दनान को देखिए और अफ्रीका के उन खुश्क साली के इलाकों को देखिए, वहां कहीं पानी का नाम है? आज भी पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं थर वगैरह पानी नहीं है, कुएं खोदते हैं पानी की जगह ही नहीं बनती। तो बात यह है कि अल्लाह की नेमतों को फॉर ग्रांटेड ना लो, उसका हक अदा करो। हम इस सूरत की तिलावत सुनते हैं और सुनते वक्त इस वक्त आप, हालांकि मेरे पास टाइम कम होता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि अगर अल्लाह की मोहब्बत का बीज दिल में डल जाए तो शायद इस टाइम में अल्लाह बरकत दे दे हमारे।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
اتنی بڑی ہستی ہے وہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور جس کو کل ہم نے جا کر ملنا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ سچے دل سے ہمیں اپنے ساتھ جوڑ دے